بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب انگارے جلد نمبر 8 ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف طاہر جاوید مغل ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 03067878222 پر ہم سے رابطہ قائم کریں، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. قسطینیا نے پتھر کی اوٹ سے دور نیچے نشیب کی طرف میں دیکھا. بڑے بڑے چٹان نما پتھروں کے عقب میں ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کی کم و بیش 8 پوزیشنیں اسے نظر آئیں. شکیل کے کارندے بھی ان میں شامل رہے ہوں گے. وہ جن گاڑیوں سے یہاں پر پہنچے تھے وہ بھی اوٹ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی. کافی زیادہ فاصلے کے باوجود گاڑیوں کی ساخت اور ان کے ماڈلز وغیرہ پہچانے جاتے تھے. قسطینیا بولی، میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں نے اب تک ہم پر زیادہ سخت حملہ نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ داراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ تین اطراف سے ہم پر بہت زور سے ٹوٹ پڑتے. آپ ٹھیک کہتی ہیں، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ وہ نشیب میں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ پتھروں کی اوٹ سے نکلیں گے تو نشانے پر آ جائیں گے. ممکن ہے کہ یہ آج رات اندھیرا پھیلنے کے بعد کوئی کاروائی شروع کریں گے. قسطینیا بولی، لیکن ان کا ایک طریقہ کار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں محصور رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم بھوک پیاس سے مجبور ہو کر باہر نکل آئیں گے، پھر وہ کوئی کاروائی کر سکیں گے. ہوا کے دوش پر تیر کر کسی کتے کی مدھم آواز مجھ تک پہنچی. میں بری طرح ٹھٹک گیا. یہ عام کتے کی آواز نہ تھی، یہ وہی خوفناک ڈیئر ہاؤنڈ تھا جس کا پورا ایک غول ہم نے رائے ونڈ کے قریب ایک کوٹھی میں دیکھ رکھا تھا. رضوان کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا. وہ منظر یاد کر کے اب بھی میرا دل کانپ جاتا تھا. قسطینیا نے بھی ان کی آواز سن لی تھی. وہ بولی، لگتا ہے کہ لاہور کی کوٹھی میں پنجرے کے اندر نظر آنے والے وہی ہاؤنڈز یہاں بھی پہنچ چکے ہیں. یہ بہت تیز رفتاری سے حملہ کرتے ہیں، ہمیں اب مزید چوکس رہنا پڑے گا. میں نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا. ایک پتھر کی اوٹ سے مجھے ایک گداور ہاؤنڈ کا منہ اور گردن کا کچھ حصہ دکھائی دینے لگا. اس نے اپنے کان کھڑے کر رکھے تھے اور بے حد بیتاب نظر آتا تھا. بہرحال مجھے زیادہ پریشانی نہ تھی. جب تک داراج یہاں موجود تھا ہم پر کوئی سخت حلہ نہیں بولا جائے گا. اس بات کی امید بھی ہمیں کافی زیادہ تھی کہ یاسمین بیگم رو پیٹ کر اپنے فرزند کو بچانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ تلاش کر لیں گی. شرط بس اتنی تھی کہ ریڈ کیٹ اور ڈیتھ اسکواڈ کے دیگر ارکان کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. تب ہی نہ، یہ سنسان علاقہ تھا. چاروں طرف ایک پرسرار سی خاموشی چھائی تھی. کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں گھیرا ڈالنے والے اب کیا سوچتے ہوں گے. یاسمین بیگم کے وہاں پہنچنے کا کوئی رد عمل ابھی تک تو سامنے نہیں آ سکا تھا. نہ جانے وہاں کیا ہو رہا تھا. قسطینیا نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے سامنے دیکھا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، شاہزیب، وہ ان لوگوں کی سفید جیپ کی چھت پر کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، یہی لگا کہ چھت پر کوئی فٹ بال سا دھرا ہے. تب میں نے ٹیلیسکوپ سے آنکھ لگائی اور اپنی نگاہ کو اس چیز پر مرکوز کیا. میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے منظر پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا. ٹویوٹا جیپ کی چھت پر داراج کی والدہ یاسمین بیگم کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا. میں پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہا تھا، یہ اسی کا سر تھا. منہ کھلا ہوا، تراشیدہ بال منتشر اور رخسار پر خون کے داغ. خون کی چند لکیریں گاڑی کی چھت پر بھی دکھائی دے رہی تھی. قسطینیا نے میرے تاثرات بھانپ لیے. ٹھٹکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہوا شازیب؟ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ سے گن جھپٹ لی. ٹیلیسکوپ سے آنکھ لگا کر اس نے بھی وہی دلخراش منظر دیکھ لیا جو میں نے دیکھا تھا. وہ بھی سکتہ زدہ رہ گئی. کتنی ہی دیر تک ہم گم سم بیٹھے رہے. میں نے کہا، قسطینیا، اس کا تو مطلب صرف ایک ہی نکلتا ہے، یہی کہ یہاں شکیل داراب کا کوئی بندہ بالکل موجود نہیں ہے. اگر کچھ بندے تھے بھی تو انہیں ان سرخ پوش درندوں نے ذبح کر ڈالا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ خون آشام بھیڑیے ہیں، اور بھیڑیا کسی کا دوست یا ساتھی کبھی نہیں ہوا کرتا. قسطینیا نے کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم اس وقت ٹیکساری گینگ کے डेथ स्क्वाड के घेरे में आ चुके हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि दाराज या उसकी फैमिली हमारी तहवील में है या नहीं। मेरा अंदाजा है कस्तीनिया कि उन लोगों में झगड़ा भी इसी बात पर हुआ होगा। शकील दाराब के साथियों ने कहा होगा कि दाराज और उसकी फैमिली के होते हुए हमारी पनाहगाह पर अंधाधुंध हल्ला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डेथ स्क्वाड वाले लोगों ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी होगी। यही बात होगी जिसकी वजह से बहस और झगड़ा होता होगा। तुमने बताया था ना कि उनकी इंचार्ज रेड कैट शकील दाराब के कारिंदे से झगड़ रही थी और उसने उससे मोबाइल भी छीन लिया था। हो सकता है कि शकील का कारिंदा शकील से हिदायत लेना चाहता हो। 100% यही बात लगती है। इन आफतजादों ने शकील के कारिंदों को किसी से राबता ही नहीं करने दिया होगा। उनको बेबस करके बांध दिया गया होगा या वैसे ही मार डाला होगा। सूरत हाल एकदम संगीन तर हो गई थी। यास्मीन बेगम जो 2-2.5 घंटे पहले यहाँ से जीती जागती हालत में मौजूद निकली थी, तहक्कुमाना अंदाज में बातें कर रही थी और बेटे की हालत पर सीखपा नजर आती थी। अब जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। उनका कटा हुआ सर गाड़ी की छत पर किसी ट्रॉफी की तरह धरा नजर आता था। ये एक तरह से डेथ स्क्वाड की जानिब से हमें खतरनाक तरीन सिग्नल भी दे दिया गया था। उन्होंने हमें बता दिया था कि दाराज की माँ की तरह दाराज की भी उनके नजदीक कोई अहमियत बाकी नहीं रही और जैसे ही उनका दाव चलेगा वो हम तक पहुँच कर हमें चीर फाड़ कर रख देंगे। अब हमें इस सवाल का जवाब भी बड़ी अच्छी तरह से मिल गया था कि अपने फर्स्ट कजन दाराज को बचाने के लिए शकील दाराब बनफसे नफीस यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया और हमें अपने इर्द गिर्द पुलिस या किसी सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ियां वगैरह क्यों दिखाई या सुनाई नहीं देती थी। इन सुनसान टीलों से बाहर किसी को पता ही न था कि दाराज और उसकी फैमिली कहाँ पर है और यहाँ डेथ स्क्वाड के जुनूनी कातिल क्या क्या खेल खेल रहे थे। यास्मीन बेगम के अंजाम पर अफसोस होने लगा। मैंने उसे खबरदार किया था और जाने से मना भी किया था, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा था वो होकर रह गया। मैं अच्छी तरह से जानता था कि डेथ स्क्वाड का असल टारगेट मैं ही हूँ, लेकिन खूनरेजी और इंतकाम के हवाले से डेथ स्क्वाड वाले किसी कानून कायदे के पाबंद तो नहीं थे। बिलफर्ज मैं ईसार का मुजाहरा करते हुए खुद को उनके हवाले कर भी देता ना तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी जाती थी कि वो यहाँ खो में मौजूद बाकी अफराद को छोड़ देंगे और खैर खैरियत से जाने देंगे। उनके किसी भी कॉल पर यकीन करना हिमाकत अजीम होता। कस्तीनिया ने नफरत से दाराज की तरफ देखा और बोली, अब शायद इस खबीस को अंदाजा हो कि बनारस वाला मोबाइल फोन तोड़कर उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। ऐसे लोगों को फिर भी कोई सबक नहीं मिलता कस्तीनिया, मैंने मायूसी से उसे कहा। वो दर्द से मुसलसल कराह रहा था। फिर मैंने सईद खोकर को अपनी जानिब आते देखा। हमारे करीब आकर वो बोला, साहब पूछ रहे हैं कि उनकी वालदा की तरफ से कोई इत्तला आई या नहीं। हाँ आई है, वो खैर खैरियत से हैं, मैंने जहरीले लहजे में जवाब दे दिया। वो पूछते हैं कि वो अब तक आई क्यों नहीं। आ जाएंगी, तुम कोशिश करो कि ये किसी तरह से सो जाए। सकून बख्श दवा की ज्यादा डोज इसको दे दो ताकि ये आराम से सोए। सईद ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और दाराज की तरफ को चला गया। मेरी निगाह ताजवर की निगाह से टकराई। उसकी निगाह में ममनूनियत नजर आती थी। मैंने कल रात जिस तरह खुद को खतरे में डालकर दाराज की मेडिसिन गाड़ी से निकालकर यहाँ पहुँचाई थी, उसने उसे बहुत ज्यादा मुतासर भी किया था। अचानक कस्तीनिया ने टीलों में कुछ फासले पर कोई चीज देखी और एकदम चौकस हो गई। गन के कंट्रोल पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई और उसने उंगली ट्रिगर पर दबा दी। क्या हुआ, मैंने गन का सेफ्टी कैच हटाते हुए पूछा। कोई है वहाँ पर, मैंने कोई हरकत देखी है वहाँ पर। कोई जानवर तो नहीं है, जानवर कपड़े नहीं पहना करते, उसने मुख्तसर जवाब दिया। उसकी सारी तवज्जो 100-150 फुट दूर एक उभरे हुए पत्थर की तरफ को ही थी। मैंने भी वहाँ एक मुतहरिक जिस्म देखा, मैंने उसे निशाने पर रख लिया। टेलीस्कोप में मजीद वाजे मंजर दिखाई देने लगा। किसी का क्रीम कलर का लिबास दिखाई दे रहा था, यूं लगा कि उस पर खून के धब्बे भी हों। कोई जख्मी लग रहा है, मैंने कहा। वो हम दोनों के निशाने पर था। सेकंड के चौथे हिस्से में हम उस पर गोलियों की बारिश कर सकते थे। फिर मैंने देखा कि वो शख्स किसी चौपाए की तरह हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ एक ढलवान पर उतरने की कोशिश में मसरूफ है। 10-15 फुट चलकर वो लुढ़क गया और पलटियां खाता हुआ मजीद नीचे चला आया। एक 2 मिनट तक वो वहीं बेहरकत पड़ा रहा। तब फिर चौपाए की तरह चलता हुआ और कभी क्रॉलिंग करता हुआ आगे आने लगा। उसकी खुशकिस्मती थी कि वो लुढ़क कर किसी हद तक नशेब में चला गया था। यहाँ झाड़ झंकाड़ भी ज्यादा थी, यूं वो डेथ स्क्वाड के सुर्ख पोश लोगों की नजरों से बचा हुआ था। कौन हो सकता है ये, कस्तीनिया ने पूछा। उसका चेहरा पूरी तरह खून और मट्टी में लुथड़ा हुआ था, पहचाना नहीं जाता था। हो सकता है कि शकील के बंदों में से कोई बंदा हो। हमसे 60-70 फुट की दूरी पर वो एक बार फिर ढलवान से लुढ़क कर किसी चीज से टकराया और फिर साकेत हो गया। शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बहुत अबतर हालत में मौजूद था। सफेद कमीज और क्रीम कलर की पतलून मट्टी और खून में लुथड़ी हुई थी। उसकी उम्र 30 साल से जायद की लगती थी। वो नंगे पांव था। मुझे लगा कि वो नीम बेहोश हो चुका है। मैंने कस्तीनिया से कहा, मैं उसकी तरफ को जाता हूँ, ये ना हो कि वो खत्म ही हो जाए। बहुत ज्यादा एहतियात से जाना, कहीं ये उन लोगों की कोई चाल ना हो। कस्तीनिया ने भी जवाब दिया, चाल लगती तो नहीं, मेरा अंदाजा है कि उसकी दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। एक गोली या दो गोलियां शायद पेट में भी लगी हैं, इसीलिए वो चल नहीं पाता। खो के गोशे से दाराज ने पुकार कर पूछा, कौन आया है? तुम्हारी वालदा नहीं है, कोई और है, मैंने सपाट लहजे में कहा। वो भाई शकील का आदमी होगा, बुलाओ उसे जल्दी, दाराज ने कराहते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा। वो बुलाए जाने के काबिल नहीं है, मुझे खुद ही उसके करीब जाना पड़ेगा, मैंने उसे आहिस्ता से जवाब दिया। वो पता नहीं क्या क्या बुड़बुड़ाता चला जा रहा था। इस मर्तबा कस्तीनिया ने मेरी एक ना चलने दी, मुझे जबरदस्ती अपने वाली जैकेट पहना दी। वो मुझे बहुत ज्यादा तंग थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे एडजस्ट कर लिया गया। ये दोपहर करीबन 1 बजे का वक्त था। कल रात की नस्बत दिन की रोशनी में खतरा ज्यादा था। बहरहाल मैं खो से बाहर निकला, किसी वक्त हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ और किसी वक्त क्रॉलिंग करता हुआ उस मजरूब शख्स तक पहुंच ही गया। 2-3 फुट गहरे गड्ढे में पड़ा था वो शख्स और गशी किसी हालत थी उसकी। मैं बोतल में थोड़ा सा पानी लेकर गया था। मैंने रुमाल गीला करके उसके चेहरे पर फेरा, खून और गर्दोगुबार के अंदर से उसके नकूश नजर आए तो मैं चौंकने पर मजबूर हो गया। मैं शकील के उस साथी को अच्छी तरह से जानता था। उस बंदे के साथ आगाज में मेरा ही टाकरा हुआ था और ठीक ठाक हुआ था। ये दरमियानी उम्र और पस्त अखलाक का मालिक पाशा था। यही वो बंदा था जिसने शराबनोशी और ऐशकोशी के इवज अपनी टीचर बीवी यानी नाहिद को शकील दाराब के हवाले कर दिया था। अब उस बंदे की हैसियत शकील दाराब के मुस्तकिल पालतू कुत्ते जैसी ही थी। उसने खून आलूद पलके उठाकर खाली खाली नजरों से मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी और गीले रुमाल से उसके चेहरे को हवा दी। चंद घूंट पानी पीकर उसके हवास कुछ बहाल हुए। तुम शाहजेब हो ना, उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और निहायत कमजोर आवाज में कहा। और तुम पाशा हो ना, मैंने पहचान लिया है, अब हिम्मत करो, ज्यादा फासला नहीं है, चंद मीटर की बात है, तुम महफूज हो जाओगे, इसी तरह लेटे लेटे मेरे साथ साथ आगे को रिंगते चले जाओ। मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मुझे लगता है मेरी टांगों से जान निकल चुकी है। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ ना, मैंने उसकी फरबा और पिलपिली कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटते हुए उसे सहारा देने की कोशिश की। उसके जिस्म का बहुत सारा खून जाया हो चुका था, रंग हल्दी की तरह पीला था। हम रिंगते हुए आगे बढ़े। वो चंद मीटर का फासला बहुत ज्यादा तवील महसूस हो रहा था। हर घड़ी यही धड़का था कि अभी एक तड़तड़ाहट गूंजेगी और हम छलनी होकर यहीं पड़े रह जाएंगे। कस्तीनिया जवाबी फायरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। बाहर तौर यहाँ पर खैरियत गुजरी और हम खो में दाखिल होकर पत्थरों की ओट में पहुंच चुके थे। ये शकील का करीबी साथी पाशा है, मैंने कस्तीनिया को इत्तला दी। क्या पोजीशन है? दोनों टांगों में गोली लगी है, बहुत खून जाया हो चुका है, एक गोली पेट में भी लगी है और दूसरी कंधे का गोश्त चीरती हुई बाहर निकल गई है। मैंने कस्तीनिया से इंग्लिश जबान में बात की थी। मेरा ख्याल था कि पाशा इंग्लिश से नाबल्द है, लेकिन ऐसा नहीं था। पाशा ने कराहते हुए कहा, बाईं टांग वाली गोली आर पार हो गई है, मगर दाईं टांग वाली गोली अभी अंदर ही है। मैंने सईद खोकर के साथ मिलकर सबसे पहले पाशा के जिस्म से खून का अखराज रोकने की कोशिश की। अपने हिस्से का कुछ पानी तो मैं बनारस को पिला चुका था, बाकी पाशा को पिला दिया। दाराज के सामान में दूध के 2-3 छोटे छोटे पैकेट भी मौजूद थे। उस दूध के चंद घूंट पीने के बाद पाशा की हालत कदरे बेहतर महसूस होने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि ये आरजी बेहतरी है और सईद का भी यही ख्याल था। پاشا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے پاشا، کیسے زخمی ہوئے ہو تم؟ پاشا کی آنکھوں میں خوف اور دہشت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اٹک اٹک کر بولنے لگا، وہ بہت ظالم ہے، شاید انسان ہی نہیں ہے، انسانوں کے روپ میں چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں۔ کن کی بات کرتے ہو تم؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی گنجے سروں والے جن کے ساتھ ہم یہاں پہنچے تھے۔ شکیل صاحب کا خیال تھا اور ہمارا بھی خیال یہی تھا، یہ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ برے سے برے دشمن تو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی مار ڈالا، بلکہ ہم سب کو مار ڈالا۔ کن کو؟ کن کو؟ سب کو۔ بنارس کے علاوہ ہم کل 8 بندے تھے جو ان کے ساتھ وہاں مندر میں پہنچے تھے۔ بعد میں ہم تم لوگوں کے پیچھے یہاں تک پہنچے۔ ہم تم لوگوں پر فائر کھولنا نہیں چاہتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ داراج صاحب اور ان کے گھر والے یہاں تم لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں۔ ہم شکیل صاحب کو بھی یہاں بلوانا چاہتے تھے، مگر یہ سفید جانور بالکل نہ مانے اور انہوں نے ہماری ایک نہ چلنے دی۔ انہوں نے ہم سے جھگڑا کیا، ہمارے موبائل فون ہم سے چھین لیے، پھر ایک دم ہم پر گولیاں چلا دی۔ انہوں نے ایک طرح سے ہم 8 لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ وہ می کی طرح ہم پر گولیاں برساتے چلے جا رہے تھے۔ پورا کمرہ خون سے بھر گیا تھا، میں لاشوں کے نیچے آ گیا تھا اور شاید اسی وجہ سے اب تک سانس لے رہا ہوں۔ یہ کل کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ میں نے پاشا سے پوچھا۔ 1 درجن سے کم تو نہیں ہوں گے، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ ان کے بارے میں ٹھیک سے جانتے بھی ہو یا نہیں، یہ عام انسانوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ یہ بغیر کسی وجہ کے بلکہ شوق سے بھی بندے کو مار دیتے ہیں۔ کرب کے عالم میں اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد اس کے ہونٹ ذرا تر ہوئے تو اس نے ہمیں بتایا کہ کس طرح مندر کی طرف جاتے ہوئے ان شرابی جانوروں نے ایک گدھا سوار راہگیر کو بغیر کسی وجہ کے گولیاں مار دی۔ سوار اور اس کا گدھا موقع پر ہی گر کر تڑپنے لگے تھے۔ پاشا بغور کستینیا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا، کیا یہ وہی فوجی کمانڈر ہیں جو برونائی سے آئی ہیں؟ میں نے وضاحت کی کہ یہ برونائی سے نہیں بلکہ ایک قریبی جزیرے سے تشریف لائی ہیں۔ پاشا نے بتایا کہ ان سرخ لباس والے شیطانوں کی انچارج لڑکی ہے، وہ تمہاری اس فوجی ساتھی کے خلاف تیش سے بھری بیٹھی ہے، بدلہ لینے کی باتیں کرتی ہے اس سے، کہتی تھی کہ اس فوجی کی وجہ سے ایسٹرن اور اس کے ساتھی ان کے قبضے سے نکل پڑے۔ میں سمجھ گیا کہ پاشا لاہور والے واقعے کی بات کرتا ہے۔ پھر مجھے داراج کی دبنگ والدہ کا خیال آیا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، کیا یاسمین بیگم تمہاری موجودگی میں وہاں پہنچی تھی؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور چہرے پر کرب کے آثار نظر آتے تھے۔ تم داراج صاحب کی والدہ کی بات کرتے ہو نا؟ میں نے اسوات میں جواب دیا۔ وہ لرزاں آواز میں رک رک کر بولنے لگا، اس وقت بھی میں ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے پڑا نظر آتا تھا، مجھے بس ان کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان کے کپڑے پھاڑ رہے تھے، ان کے بال کھینچ رہے تھے۔ پھر وہ جان بچانے کے لیے بھاگ نکلی اور اسی کمرے میں آ گئی جہاں میں سانس روکے پڑا تھا۔ وہ بری حالت میں تھی۔ وہ بلند آواز میں ہنستے اور چلاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آئے اور کھینچ کر انہیں واپس لے گئے۔ ادھ کھلے دروازے سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ میں نے اسے مزید 2-3 گھونٹ پانی پلایا۔ اس پانی میں سعید نے فوری انجری کا کوئی سیرپ بھی ملا دیا تھا۔ 1-2 منٹ بعد پاشا نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میڈم نے ایک بار پھر خود کو چھڑا لیا اور واپس بھاگنا چاہا، مگر بھاری جسم کی وجہ سے وہ ایک ڈھلوان پر گر گئی۔ ان کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی وقت ختم ہو گئی تھی۔ ان تمام وحشی جانوروں نے ان کا گلا کاٹا اور ان کا خون ایک فلاسک میں جمع کیا، جسے بعد میں وہ وسکی میں ملا کر پیتے رہے۔ وہ انسانوں کے روپ میں بلائیں ہیں بلائیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے قد کاٹ، ان کے چہرے، ان کی خصلتیں، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ پاشا دھیمی آواز میں بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ نظر اٹھا کر دور لیٹے داراج کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ یقیناً ہماری طرح وہ بھی یہی چاہتا ہوگا کہ داراج کی ماں کا دردناک انجام داراج کے علم میں کبھی نہ آئے۔ چند سیکنڈ بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، ان درندوں نے میڈم کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے ہاؤنڈ کتوں کے آگے پھینک ڈالا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی اثنا میں دور کہیں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ میری طرح पाशा और कस्तीनिया ने भी चौंक कर ये आवाज सुनी। हमने अबरालूद आसमान पर निगाहें दौड़ाई, मगर हेलीकॉप्टर तो कहीं नजर नहीं आया था। शायद ये हमें ही ढूंढ रहा हो, पाशा ने कराहते हुए कहा। मैं बोला, तुमने ढूंढने की बात की है तो जहन में सवाल आता है कि इतना बड़ा वाकया हो चुका। दाराज दाराब अपनी फैमिली समेत गायब था। पुलिस और दीगर लोग अब तक इस जगह पर क्यों नहीं पहुंच सके? हमें क्यों नहीं ढूंढ निकाला गया? उनको बड़ी हद तक धोखे में रखा गया था, पाशा ने कहा। क्या मतलब? हमारी ही जबानी उनको कहलवाया गया था कि हम बड़े बरसाती नाले के दूसरी तरफ वाले इलाके में मौजूद हैं। ये अल्फाज मुझसे ही कहलवाए गए थे। उन्होंने मेरे सर से राइफल लगा रखी थी कि यही बोलना जो हम कहते हैं, और मेरी गर्दन पर एक फुट लंबा छुरा रखा गया था। जब SSP साहब का फोन आया तो उन सुर्ख कपड़ों वालों ने मुझे मजबूर किया कि मैं यही कहूँ, मैं पुलिस को गलत इत्तला दे दूँ। पाशा ने जरा तवक्कुफ किया और अपनी सांस दुरुस्त करते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि पुलिस और दूसरे लोग हमारी तलाश के लिए सारा जोर नाले की दूसरी तरफ वाले इलाके में लगाते फिरते हैं। वो जगह यहाँ से 10-15 किलोमीटर मशरक की तरफ को है। मैंने कहा, जाहिर है कि तुमने SSP साहब से उर्दू या पंजाबी में बात की होगी। उस गैर मुल्की गैंग के लोग उर्दू पंजाबी कहाँ समझते थे? तुम SSP को दुरुस्त जगह भी तो बता सकते थे, बेवकूफ। आप ठीक कहते हैं, लेकिन उस वक्त अकल ने इतना काम ही न किया था। हेलीकॉप्टर की आवाज एक बार फिर जोरदार तरीके से सुनाई दे रही थी, मगर अब वो मजीद दूर से आ रही थी। मैंने बगौर पाशा की हालत को देखा। अगर उसके पेट की सर्जरी ना होती तो अगले 5-6 घंटों तक उसका जिंदा रहना महाल नजर आता था। वो आदि नशेबाज और ऐश परस्त आदमी था। उसका जिस्म खोखला हो चुका था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के बहुत नुमाया नजर आते थे। मैं इस बात पर हैरान था कि वो अब तक जिंदा कैसे बैठा है। मेरे और कस्तीनिया के इस्तफसार पर उसने बताया कि इंस्पेक्टर कैसर चौधरी और लाला वरियाम की मौत ने पुलिस डिपार्टमेंट में जबरदस्त खलबली मचा रखी है। फिर इसके बाद ये दाराज और उसकी फैमिली की गुमशुदगी का वाकया पेश आ गया। उसने पूरी इंतजामिया की चूल्हे हिलाकर रख दी है। बड़े बड़े अफसरान की दौड़े लगी हुई हैं और बेशुमार मशकूक अफराद पकड़े भी गए हैं। कस्तीनिया ने उससे पूछा, अब परिंदों और चमगादड़ों वगैरह के हमले के बारे में आम लोगों का क्या ख्याल है वहाँ पर? पाशा बोला, ये खबर मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा फैली है कि कल्लर कहार के करीब नमकीन पानी के किसी चश्मे की तरफ जाते हुए दाराज साहब के काफिले पर परिंदों का हमला हुआ है और गाड़ियों के उलटने की वजह से कई बंदों की हलाकत भी हुई है। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये कोई आम परिंदे या जानवर बिल्कुल नहीं, उनको खास तरीके से सुधाया गया है या फिर वही जानवर जादू टोने के असर में है। लोगों में और खास तौर से कम पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा डर पाया जाता है इसी बात को लेकर। खो के उकबी हिस्से में मौजूद दाराज का दर्द तो कुछ कम था क्योंकि सईद ने उसे ट्रिपल डोज दे रखी थी। ताहम वो पहले से ज्यादा बेचैन नजर आता था। वो पाशा को देख चुका था और शायद पहचान भी चुका था। वो उससे बात करना चाहता था। पहले तो वो उसे पुकारता रहा और फिर गरजना बरसना शुरू कर दिया। मुझे और कस्तीनिया को फिर अंदेशा पैदा हुआ कि वो कहीं ताजवर के दर पे न हो जाए। जैसे पानी जल्दी से नशेब की तरफ आ जाता है, वो हर तरफ और हर तरह का गुस्सा ताजवर पर फौरन निकालना चाहता था। मैंने दाराज के पास जाकर कहा, वो बहुत ज्यादा जख्मी है, तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? क्या बकता है वो? कैसे पहुंचा यहाँ पर? और वालदा के बारे में क्या बताता है मेरी? मैंने झूठ बोला, वालदा के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। खुद बड़ी मुश्किल से बच बचाकर यहाँ तक पहुँचा है। तुम देखते ही हो, उसकी दोनों टांगों में गोलियां लगी हुई हैं और पेट में भी एक गोली मौजूद है। मोबाइल फोन नहीं है उसके पास। मोबाइल फोन गैंग वालों ने उससे पहले ही छीन लिया था, और सिर्फ पाशा का ही नहीं, सबके मोबाइल फोन सबसे पहले छीन लिए गए थे। फिर मैंने मुख्तसर अल्फाज में वो सब कुछ दाराज के गोश गुजार कर दिया जो वहाँ पर पेश आया था। बस ये बात छुपा ली कि उसकी दबंग वालदा का कटा हुआ सर सामने एक गाड़ी की छत पर रख दिया गया है। दाराज का बालाई वजूद गुस्से और खौफ आमेज हैरत के सबब लरजने लगा था। ताजवर किसी खिदमत गुजार बीवी की तरह दाराज के सरहाने गुमसुम खड़ी नजर आती थी। दाराज की मौजूदगी में उसे कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही न होती थी। दाराज अब समझ गया था कि यहाँ से उनका बच निकलना आसान काम नहीं होगा। शकील दाराज ने जिन लोगों के साथ गठजोड़ किया था वो किसी के दोस्त नहीं थे, वो बस खून आशाम भेड़िए थे और उन्होंने इस खो का मुहासरा कर रखा था। दाराज ने जरा हसरत से इस बेकार मोबाइल फोन को देखा जिसे उसने अपने हाथों से कल टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अभी सूरज गुरूब होने में कुछ देर थी लेकिन अंधेरा सा महसूस होने लगा था। ये सितंबर की एक अबर आलूद सपहर थी और तेज हवा भी चलना शुरू हो गई थी। एक बार फिर हेलीकॉप्टर की मध्यम आवाज हवा के दोष पर तैरकर हम तक पहुंचने लगी। कस्तीनिया ने पुकार कर कहा, शाहजेब ये देखो वो लोग क्या करते हैं। मैं तेजी से दहाने के पास पहुंचा। कस्तीनिया ने उंगली से फासले पर इशारा करके बताया, डेथ स्क्वाड के लोग अपनी तीनों गाड़ियों को हरकत में ले आए थे। क्या वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं? सईद खोकर ने हकलाकर पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है वो उन गाड़ियों को छुपा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की नजर से बचाना चाहते हैं, कस्तीनिया ने वसूख से कहा। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। वो लोग गाड़ियों को घनी झाड़ियों के नीचे ले गए थे। एक गाड़ी एक चट्टान के साइबान तले खड़ी कर दी गई थी। टेलीस्कोप मुझे सारा मंजर वाजे दिखा रही थी। लेकिन हमारी वाली जीप तो वहीं गढ़े में फंसी नजर आती है ना, कस्तीनिया ने कहा। शायद वो ऊपर से दिखाई दे जाए, फिर क्या होगा। अभी कस्तीनिया का फिक्र मुकम्मल भी न हुआ था कि हमें अपनी धसी हुई जीप के करीब हरकत नजर आई। शैतान जादों में से कोई एक जीप के उकब में मौजूद था। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वो जो झाड़ झंकार जीप के ऊपर फेंक रहा था वो हमें नजर आ रहा था। उसने कई बड़ी बड़ी टहनियां काट कर जीप के ऊपर फेंक दी और उसे तकरीबन कैमोफ्लाज कर दिया था। इसी दौरान में मैं अपनी गन के जरिए उसे मुसलसल निशाने पर लेने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर मैं उसकी टांग को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका था। इस गन की गोली ने यकीनन उस शैतान जादे की एक पिंडली को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। मैंने उसे जमीन पर गिरते और फिर वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाते देख लिया था। करीबन यही वक्त था जब तेज हवा के साथ गरज चमक शुरू हुई और वादिये सोन के इस सुनसान इलाके में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर की आवाज एक बार फिर दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा ये आवाज निस्बतन करीब से आई थी मगर हेलीकॉप्टर दिखाई फिर भी न देता था। कस्तीनिया ने कहा, शाहजेब मेरा ख्याल है कि हमें इस हेलीकॉप्टर को मुतवज्जो करने के लिए कोई फायर करना चाहिए। मैंने कस्तीनिया की तायीद की। बेशक शकील दाराब के लोग भी हमारे लिए उतने ही खतरनाक थे जितने के डेथ स्क्वाड के ये कातिल, मगर शकील दाराब के हवाले से हमें एक एडवांटेज हासिल था। वो ये कि दाराज की फैमिली हमारे पास मौजूद थी। वो दाराज की मौजूदगी में हम पर सख्त किस्म का हमला नहीं कर सकता था। कस्तीनिया ने ताकतवर MG3 का रुख आसमान की तरफ कर लिया और उमूदी रुख पर तीन बर्स चला दिए। ये ताकतवर गन थी और उसकी खासी आवाज भी थी मगर इस तूफान बादोबारा में पता नहीं उसकी आवाज कहां तक गई थी और हेलीकॉप्टर उसे पहचान पाएगा या नहीं। मौसम तेजी से बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा था। इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई बिल्कुल न दी। यकीनन मौसम के तेवर देखकर वो अपने ठिकाने की तरफ को चला गया होगा। शदीद जख्मी पाशा को मैंने सहारा देकर उठाया। सईद ने उसके उकब में एक कंबल तह करके रख दिया था और हमने उसे नीम दराज हालत में छोड़ दिया। वो दहाने से बाहर मूसलाधार बरसती बारिश को देख रहा था। शायद उसे भी यही लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी बारिश देखता है। वो मुकम्मल तौर पर एक भटका हुआ शख्स था लेकिन इस वक्त मौत के घेरे में था। रुक रुक कर बोला, मेरा अंदाजा है कि शाम के बाद यानी अंधेरा होते ही ये लोग यहाँ हल्ला बोल देंगे। उनके पास 7-8 जदीद राइफलें हैं, इसके अलावा पिस्तौल भी हैं। उनकी सरगना लड़की उसके पास एक लंबा तेज धार छुरा भी मौजूद है जिसके एक तरफ दंदाने बने हैं। वो उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक लड़की है। फिर वो रुक कर मजीद धीमे लहजे में बोला, मैंने कल रात आखिरी पहर उन खबीस लोगों की बातें सुन ली थी। वो एक दूसरे को बहुत गंदे लतीफे सुना रहे थे और माँ बहन की गालियां भी दे रहे थे। उनकी बातों में दाराज साहब की वाइफ का जिक्र भी खास तौर से आया था। वो बड़े लोफर अंदाज में उनकी खूबसूरती के बारे में बातें भी कर रहे थे। किसी इंग्लिश रिसाले में छपी हुई तस्वीर उनके पास भी थी। ये दाराज साहब की वाइफ की तस्वीर थी। वो मजीद भी कुछ कहता था मगर फिर आहिस्ता से चुप हो गया। मेरा ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा था कि अगर मैं खून को उनके हवाले भी कर दूं ना तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो बाकियों को फिर भी माफ नहीं करेंगे। उनका वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत था, जैसे मूजी जानवर को बेझिझक खत्म कर दिया जाता है इसी तरह उनको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए था। यकीनी बात थी कि पाशा के जिस्म के अंदर भी ब्लीडिंग जारी थी। यही वजह थी कि उसका बुझा सा चेहरा मजीद बुझता चला जा रहा था, रंग मजीद जर्द होता जा रहा था। उसने धुंधलाई हुई नजरों से सारी खो का जायजा लिया और बोला, तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी फखर भी तो था, इसके अलावा एक लंबे कद का पठान भी तो था। वो फारिस जान के बारे में पूछ रहा था। पाशा के इस सवाल ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि शैतान जादी ने फखर और फारिस के हवाले से झूठ बोला था, वो दोनों उनके कब्जे में नहीं थे। मैंने पाशा को बताया कि चमगादड़ों के हमले के वक्त सब लोग तितर बितर हो गए थे, इसलिए शायद वो भी किसी तरफ को निकल खड़े हुए थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी और मुसलसल हो रही थी। अब शाम भी हो चुकी थी, इसलिए अंधेरा गहरा हो गया था। कस्तीनिया और मैं दोनों जानते थे कि अब हमें ज्यादा चौकस रहने की जरूरत पड़ेगी। वो खून आशाम बलाएं जिनके नजदीक अपनी जिंदगी और मौत की भी कुछ अहमियत नहीं रही थी, किसी वक्त भी हम पर छपट सकते थे और हमें खत्म कर डालने के लिए वो कुछ करने से गुरेज नहीं करेंगे। मैंने कस्तीनिया को कुछ देर के लिए MG3 के सामने से हटा दिया और ये ड्यूटी खुद ही संभाल कर बैठ गया। भूख ने अब नकाहत की शक्ल इख्तियार कर ली थी, पेट में जैसे बल से पड़ गए थे। थोड़ी देर पहले ताजवर ने दाराज की नजर बचाकर कस्तीनिया को बिस्किट्स की पेशकश भी कर डाली थी। ये वही बिस्किट्स थे जो दाराज के जाती सामान में मौजूद थे। कस्तीनिया ने ये पेशकश कबूल ना की। वो जानती थी ये बहुत थोड़ी मिकदार में हैं और दाराज के अलावा जख्मी पाशा और बनारस को भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने खो की दीवार से टेक लगा ली। MG3 स्टैंड पर थी। मैंने शहादत की उंगली गन के ट्रिगर पर ही दबा रखी थी और रेड अलर्ट बैठा था। बारिश टीलों घाटियों और ढलवानों पर तवातर से बरसती थी। उसका शोर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। मेरा ध्यान अपने हमदम सजावल सियालकोटी की तरफ को चला गया। उसे भी पहाड़ी इलाके की मूसलाधार बारिशें बहुत ज्यादा पसंद थी। क्या वो अब कभी ऐसी बारिश नहीं देख सकेगा? अब कभी अपनी खौसना को नहीं देख पाएगा? वही खौसना जिससे उसने कभी खुलकर इजहार मोहब्बत भी नहीं किया था, लेकिन जिसे वो दिलो जान से चाहता भी था। उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दे डाली थी। अगर हम बरवक्त ना पहुंच पाते तो शायद वो अपनी जान भी हार चुका होता। अब भी वो पता नहीं किस हाल में मौजूद होगा। उस जीदार साथी की याद ने मेरा दिल दुख दर्द से भर दिया। इसके साथ ही हानावानी का मकरूह चेहरा निगाहों के सामने घूमने लगा था। मैं जल्द अज जल्द उस बदजात औरत का सामना करना चाहता था, लेकिन दरमियान में ये शैतान से गैंगस्टर्स टपक पड़े थे। उनकी कमर टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर परे तो नहीं थे ना। और हालात की सितम जरीफी ने वादी सौन के इस वीरान टीलों में हमें और उनको आमने सामने कर रखा था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इन टीलों में हमें उनके हिसार में दे दिया था। फिर मेरी सोच जख्मी रिजवान और पहलवान हशमत की तरफ भी चली गई। मुझे यकीन था कि दाऊद भाव के रावी फार्म में वो बिल्कुल महफूज होंगे और रिजवान का इलाज भी ठीक ठाक तरीके से जारी होगा। ये भी मुमकिन था कि दाऊद भाव ने सजावल को भी रावी फार्म में ही पहुंचा दिया हो। मुझे उम्मीद थी कि वलीद और पहलवान हशमत बहुत अच्छी तरह उनकी देखभाल करते होंगे। पहलवान हशमत एक नहायत इंसान दोस्त और बेलौस शख्स था। अपनी जान खतरे में डालकर भी दूसरों के काम आना उसकी खू थी। मुझे याद आया कि उसने किस तरह अभी तक ताजवर का जेवर संभाल कर रखा हुआ था। ये वही जेवर था जो मैंने निकाह से पहले ताजवर के लिए बनवा रखा था। फिर सब कुछ उलट पुलट हो गया। ताजवर किसी और की बन गई और मैंने वो जेवर गलती से पहलवान हशमत के हवाले कर दिया। मेरा ख्याल था कि वो उससे अपने माशी हालात कुछ बेहतर बनाने के लिए उन जेवरात को फरोख्त कर देगा और अपने काम में ले आएगा, मगर वो अब भी पता नहीं किस उम्मीद के सहारे उन तमाम जेवरात को संभाले बैठा था। लाहौर में कयाम के दौरान में एक दिन मैंने उससे कहा था, पहलवान जी आप वो जेवर मुझे वापस दे दें। वो तुरंत से बोला, जब एक दफा तोहफा दे दिया तो फिर वापस नहीं लेते ना। सियाने तो यही कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। ज्यादा ना बोलो तुम। आप तोहफे की बात कर रहे हो ना, लेकिन आपने ये तोहफा लिया ही कब था? इसको पोटली बनाकर रखा हुआ है और चुप करके संभाल के कहीं इधर उधर भी जाते हैं तो अपने साथ ही लेकर जाते हैं। ये तो अब मेरी मर्जी है ना कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ, संभाल के रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ या किसी को दे देता हूँ, इससे तुम्हारा क्या काम? मैं जानता हूँ आप एक ऐसी उम्मीद पाल रहे हैं जिसका पूरा होना बिल्कुल नामुमकिन है, और शायद अब मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। برائے مہربانی آپ ان تمام گہنوں کو بیچ کر یا تو استعمال کر لیں یا پھر مجھے واپس کر دیں، تاکہ تم ان سب چیزوں کو کسی گندے نالے میں پھینک دو، اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے پاس محفوظ پڑے رہیں۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس نے سارا ماحول ہی بدل دیا۔ میں پہلوان کی باتوں کو یاد کر رہا تھا اور قسطینیہ پاشا کے پاس بیٹھی اس کے پیٹ کے زخم سے رسنے والے خون کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ وہ پاشا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ پاشا ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں اس کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ بدروحوں کی طرح ہیں، کسی وقت تو لگتا ہے کہ وہ بدروحے ہیں، عام لوگوں کی شکلیں ایک دوسرے سے اتنی ملتی جلتی کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سب کے سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں، عادتوں میں بھی، شکلوں میں بھی اور کپڑوں میں بھی۔ قسطینیہ نے کہا، تم اس لڑکی کا بتا رہے تھے جسے یہ لوگ راستے سے پکڑ کے لائے تھے، وہ لڑکی نہیں تھی، 28-30 سال کی جوان عورت تھی، اپنے خاوند کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس وقت ہم آپ لوگوں کو گھیرنے مندر کی طرف ہی جا رہے تھے، بنارس نے گاڑی روک کر مندر کا راستہ پوچھا تھا، ان لال کپڑوں والے شیطانوں نے لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا اور راستہ بتانے والے کے پیٹ میں چھرا مار کر اس بیچارے کی انتڑیاں باہر نکال ڈالی۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ ان کے پاس ہی ہوگی، اور کہاں ہوگی؟ اس کا جو حال ہوا ہوگا وہ بتانے کی ضرورت پیش آئے گی کیا؟ پاشا نے نحیف آواز میں کراہتے ہوئے قسطینیہ کو کہا۔ یوں لگتا تھا کہ اب اس پر غشی طاری ہوتی ہے۔ بادل زور سے گرجے اور بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ایک بار پھر بجلی چمکی اور کھو کے سامنے تاریک نشیب و فراز اور ٹیلے دور تک روشن ہو گئے تھے۔ ان تمام ٹیلوں میں ہی کہیں ایک گاڑی کی چھت پر یاسمین بیگم کا کٹا ہوا سر بھی دھرا نظر آتا تھا، یا عین ممکن تھا کہ گاڑیوں کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے وہ سر نیچے لڑا گیا ہو اور ڈیئر ہاؤنڈز اپنے نوکیلے دانتوں والے جبڑے سے اس کے بھی چتھڑے اڑا چکے ہوں۔ یہ سارا تصور ہی بے حد لرزا خیز تھا میرے لیے۔ کوئی آ رہا ہے، یقیناً قسطینیہ نے چونکی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، چمکتی بجلی میں میں نے بھی کسی متحرک چیز کو دیکھا تھا، وہ برق رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے گن کے دستے پر گرفت مضبوط کر لی۔ اسے ہماری خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی۔ ہمارے سامنے کوہ دمن دور تک روزے روشن کی طرح آیا ہو گئے۔ میں نے دو ڈیئر ہاؤنڈز کو اپنی طرف آتے دیکھا جو خوفناک انداز میں ہماری طرف ہی جھپٹتے تھے۔ ان کے چھریرے بدن، پتلی گردنیں اور لمبی تھوتیاں، سب کچھ ہمیں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری کھو سے ان کا فاصلہ 30-40 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ ہاں، میں اسے اپنی بہت زیادہ خوش قسمتی ہی کہوں گا، اگر آسمانی بجلی کے سبب میں انہیں دیکھ نہ سکتا تو ان کی خونی یورش کا پتہ اس وقت چلتا ہمیں جب وہ ہمارے سروں پر پہنچ چکے ہوتے، اور اس وقت شاید MG3 جیسی گن بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ فائر کرو شازیب، فائر، قسطینیہ چلائی۔ میں نے اندھیرے میں اندازے سے نشانہ لے کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیلٹ پر لگی گن کی گھن گرج سے قرب و جوار لرز اٹھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ کم از کم وہ دونوں کتے تو ضرور نشانہ بن گئے ہوں گے، لیکن وہ دو نہیں تھے، ایک تیسری پرچھائی مجھے کھو سے صرف 10-12 قدم کی دوری پر ہی نظر آئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر کا دباؤ بڑھایا، خونخوار جانور نشانہ بنا اور لڑکتا ہوا دہانے کے عین سامنے آ گرا۔ یہی وقت تھا جب چوتھا کتا بلائے ناگہانی کی طرح کھو میں داخل ہوا اور قسطینیہ پر جھپٹا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ قسطینیہ پشت کے بل زخمی بنارس کے قریب گر پڑی۔ میری والی گن اس کے ہاتھوں میں تھی، لیکن اس کے پاس گن استعمال کرنے کی مہلت ہی نہ رہی۔ گرتے وقت گن اس کی گرفت سے نکل چکی تھی۔ میں نے اسے بفرے ہوئے کتے کے ساتھ برسرے پیکار دیکھا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وقت تھا جب سامنے سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ کافی قریب سے کی جا رہی تھی۔ میں نے MG3 کے ساتھ بھرپور جواب دیا۔ کھو کے اندر نہتی قسطینیہ اور ڈیئر ہاؤنڈ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ یہی وقت تھا جب میں نے تاجور کو کسی چیل کی طرح ڈیئر ہاؤنڈ پر جھپٹتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی میری والی گن تھی جو اس نے اس کے لمبے بیرل کی طرف سے پکڑ رکھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کتے کی کھوپڑی پر ایک طوفانی ضرب لگائی، پھر دوسری۔ کتے نے قسطینیہ کو چھوڑا اور پلٹ کر تاجور کی طرف آیا۔ اس کے دھکے سے تاجور گن سمیت دور جا گری۔ قسطینیہ نے وہ فوجی ڈیگر نکال لیا جس سے اس نے جنون زدہ چمگادڑ کو تہتیخ کیا تھا۔ وہ جست لگا کر اکب سے ڈیئر ہاؤنڈ پر جا پڑی۔ کتے کے حیوانی شور نے کھو میں اچانک سے تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ सामने से गोलियों की बौछार आ रही थी, हर तरफ चिंगारियां फूट रही थी। साफ पता चलता था कि डेथ स्क्वाड वालों ने चालबाजी दिखाई है। पहले डियर हाउंड्स को हम पर छोड़ा गया और जब हम उनसे बरसरे पैकार थे तो स्क्वाड के बदनामे जमाना शूटर्स हमारे सरों पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ भी कामयाबी उनके लिए आसान तो न थी। उनका मुकाबला ईस्टर्न किंग से था और बेमिसाल MG3 गन से था। MG3 का ये नया मॉडल नहायत शानदार था। मैंने डट कर जवाबी हमला किया। मुखालिफ सिम्स से चलाई जाने वाली गोलियां अब खो के अंदर तक आ रही थी। पाशा के लिए खतरा था। इससे पहले कि उसके लिए कुछ किया जा सकता, क्लाशनकोफ का एक बर्स्ट उसके सीने और गर्दन को छलनी कर गया। हिम्मत से शाहजेब, हिम्मत से, मैं आ गई हूँ। कस्तीनिया की पुरजोश आवाज मुझे अपने बिल्कुल करीब से सुनाई दी। वो डियर हाउंड्स का खात्मा करके मेरे करीब आ बैठी थी। उसके हाथों में ऑटोमेटिक 8 mm राइफल थी। हमने जमकर फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ बरसती बारिश और धाड़ते बादलों में ये एक जोरदार मारका था। सईद खोकर लड़ाई भिड़ाई वाला आदमी बिल्कुल न था। शायद उसे ठीक से राइफल थामना भी न आती होगी। खो का सबसे महफूज हिस्सा उकबी गोशा था, जहाँ दाराज और ताजवर मौजूद थे। वो भी उनके पास सुखड़ा सिमटा खामोश बैठा था। हमला आवरों में से कोई एक शैतान ज्यादा खो के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो किसी पत्थर की ओट में बैठा था और बड़ी कारगर फायरिंग करता चला जा रहा था। वो मुझे मुखातिब करके जोर से धाड़ा, तुझे छोड़ेंगे नहीं ईस्टर्न, नहीं छोड़ेंगे तुझे। जो कुछ तूने हमारे साथ किया उससे हजार गुना तेरे साथ बुरा करेंगे। तुझे एक दर्दनाक कहानी बना डालेंगे हम सब। वो पत्थर की ओर से निकलकर खो की तरफ आने की भरपूर कोशिश करता जा रहा था, मगर कस्तीनिया ने उसे पूरी तरह टारगेट किया हुआ था और एक लम्हे की मोहलत भी उसे नहीं देती थी। मैंने अपनी सारी तवज्जो बाएं जानेब मबजूल कर रखी थी, जहां मेरे अंदाजे के मुताबिक शैतान जादों की कम अज कम 5 पोजीशनें तो मौजूद थी। रेड कैट भी यकीनन उसी तरफ को मौजूद थी। ये अंधाधुंध फायरिंग अजान हो रही है। और अभी टाइम क्या है, कितना है? 7:04। अच्छा, एक मिनट। लाइट जला दो बाहर की जगह। रेड कैट भी यकीनन उसी तरफ मौजूद थी। ये अंधाधुंध फायरिंग कमोबेश 5 मिनट जारी रही। हमने डेथ स्क्वाड वालों की आगे बढ़ने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि वो पसपा हो रहे थे। वो फायरिंग तो अब भी कर रहे थे, मगर अब तक पहुंचने वाली गोलियों का जाविया इतना खतरनाक नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद फायरिंग अचानक से थम गई। बारिश की शिद्दत में भी थोड़ी सी कमी वाकई हो गई थी, मगर बिजली उसी तरह चमकती नजर आती थी और बादल जोर जोर से धाड़ते थे। एक डियर हाउंड की लाश खो के ऐन सामने पड़ी नजर आती थी। उसका खून बारिश के पानी के साथ मिलकर नशेब की तरफ जा रहा था। दूसरे डियर हाउंड खो के वस्त में अधभुजे अंगारे के करीब पड़ा था दूसरा डियर हाउंड खो के वस्त में अधभुजे अंगारों के करीब पड़ा नजर आता था। कस्तीनिया ने उसकी पसलियों और पेट में कम अज कम 5 जगह पर फौजी खंजर घोंप दिया था। ताजवर ने कुत्ते के सर पर गन के दस्ते से जो जरबे लगाई थी उनमें से एक ने उसकी आंख को गहरा आंख को गहरा जख्म दिया था। शायद यही जख्म था जिसने उसे कस्तीनिया से तवज्जो हटाने पर मजबूर भी कर दिया था। कस्तीनिया MG3 के सामने आ बैठी। मैंने आगे बढ़कर सबसे पहले पाशा को देखा। वो नीम जान तो पहले ही था, अब हर तकलीफ से आजाद हो चुका था। मैंने उसे उठाकर खो की दीवार से टेक लगाकर बिठा दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा भी डाल दिया। खो में जगह जगह खून था और गोलियों के खौल बिखरे हुए नजर आते थे। सईद ने मेरे करीब आते हुए कहा, बेगम साहिबा के कंधे पर भी काफी चोट आई है, खून निकल रहा है। बेगम साहिबा से उसकी मुराद ताजवर थी। मैंने देखा वो दराज के करीब खड़ी थी और अपने कंधे पर एक कपड़ा रखकर दबाया हुआ था। सईद ने कहा, जब कुत्ता उन पर झपटा तो ये पीछे की तरफ गिरी थी। उस वक्त किसी पत्थर की चोंच उनको लग गई थी जो कि बहुत जोरदार थी। जख्म ज्यादा तो नहीं है? नहीं, लेकिन थोड़ा गहरा है, खून निकल रहा है। सामने से इक्का दुक्का फायर अब भी आ रहे थे, जिसका जवाब कस्तीनिया बड़ी मुस्तैदी से दे रही थी। दाराज ने एक बार फिर बढ़ते हुए दर्द की वजह से वावेला शुरू कर दिया। इस मर्तबा सईद की शामत आई थी। उसने सईद के अहले खाना से नाजेबा रिश्ते जोड़े, उसे सख्त बुरा भला कहा कि वो उसका दर्द कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? सईद लरसता कांपता उसके करीब पहुंच गया। पहले उसे ऐन अपनी नाफ में दाराज की एक जोरदार कोहनी खाना पड़ी, फिर दाराज की फेंकी हुई एक प्लेट उचटती हुई सी उसके सर पर लगी। तब वो अपने मेडिकल बॉक्स की तरफ मुतवज्जो हुआ और कोई दवा या ऑइंटमेंट ढूंढने लगा। वो कल शाम से करीबन मुसलसल उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था। मैं जानता था कि वो थक कर हलकान हो चुका है। इसके अलावा वो इर्द गिर्द की सूरत हाल के इसके अलावा वो इर्द गिर्द की सूरत हाल के सबब बेहद दहशत ज़दा भी था। इसके बावजूद वो करवट के बल लेटे दाराज की पुश्त के मसाज में मसरूफ था। उसकी सांवली पेशानी पसीने से तर थी। फिर मेरी निगाह ताजवर के कंधे पर जा पड़ी। कंधे की पिछली जानिब गर्दन के करीब चोट आई थी और खून रिश्ता नजर आता था। उसकी हल्की सब्ज कमीज उस जगह से सुर्ख दिखाई देने लगी थी, क्योंकि वो पुश्त के बल गिरी थी और चोट कंधे के उकबी साइड पर लगी थी। इसलिए उसे खुद भी ठीक से अंदाजा नहीं था कि खून का बहाव कितना है। मैं उसके करीब गया और कहा, मिसेस दाराज, आपको काफी चोट लगी है, खून निकल रहा है, मेरा ख्याल है कोई इलाज मालजा कर लिया जाए। मैंने मेडिकल बॉक्स खोला। तिब्बी इमदाद का काफी सामान इसमें पहले से मौजूद था। मैंने पायोडीन, कॉटन और मेडिकल टेप वगैरह निकाल ली। ताजवर हिचकिचा रही थी, मगर ये बात वो जान चुकी थी कि उसके जख्म से बहने वाला खून कमीज को भिगोता है। जहां पर चोट लगी थी वहां से कमीज फट भी गई थी। मैंने कमीज का ये शिगाफ थोड़ा सा मजीद खुला किया। इसके लिए रेशमी बालों ने कंधे और गर्दन को उकब से ढांप रखा था। अपने बालों को जरा समेट ले, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर बालों को गर्दन से हटाने की कोशिश की। मेरी कुर्बत ने उसके जिस्म में हल्की सी लर्जिश भी पैदा कर रखी थी। मजबूरी थी, वरना मैं उसको छूने से इज्तनाब ही करता था। दाराज तकलीफ में था, इसके बावजूद उसे मेरा यूं ताजवर के करीब आना बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने गर्दन मोड़ दी और भिन्ना कर सईद खोकर से मुखातिब हुआ, यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देखते हो, जाओ उनकी ड्रेसिंग करो। उसका इशारा यकीनन ताजवर की तरफ ही था। सईद, जो दाराज की कमर का मसाज कर रहा था, लड़खड़ाता हुआ उठा और मेरे हाथों से ड्रेसिंग का सामान फौरन ले लिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, ताजवर, आपने जुर्रत का मुजाहरा किया था, कस्तीनिया आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बेचैन है। मेरे अल्फाज दाराज के कानों तक नहीं पहुंचे थे। उसे यही लगा था कि मैं सईद खोकर से कुछ कहता हूं। इसके बावजूद वो मुसलसल मुझे घूर रहा था। उसकी निगाहों में जैसे रकाबत और नफरत की बिजली कूद रही थी। मैं वापस कस्तीनिया के करीब पहुंच गया। खो के वस्त में पड़ी कुत्ते की लाश ने माहौल को बहुत खराब कर रखा था। मैंने इस लाश को घसीट कर खो से बाहर फेंक दिया। दूसरे कुत्ते की लहीम शहीम लाश को भी दहाने के सामने से हटा दिया गया था। खुश्क लकड़ियों से हमने जो आग जलाई थी उसकी मध्यम रोशनी में खो के फर्श पर जा बजा खून के निशानात नजर आ रहे थे। मैंने उन पर बजरी नुमा कंकर और रेत वगैरह फेंक कर उन्हें जुजवी तौर पर छुपा दिया था। फायरिंग अब रुक चुकी थी, मगर हम पूरी तरह से चौकस बैठे थे। जो बारिश कल शाम को शुरू हुई थी उसने फिर रुकने का नाम ही ना लिया, वो सारी रात बरसती रही। अब दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया था, लेकिन कभी कभी हल्की और कभी तेज बारिश अब भी हो रही थी। प्यास का मसला तो अब हल हो चुका था, मगर भूख ने हम सब लोगों का बुरा हाल कर रखा था। दाऊद भाव का गद्दार साथी बनारस, जिसकी वजह से हम सब इस घेरे में फंसे थे, अब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। यूं महसूस होता था कि अगर आज रात तक उसे तसल्ली बख्श तिब्बी इमदाद ना मिली तो वो जांबर नहीं हो सकेगा। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था ताकि पता चलता कि भाव के गैंग में और कौन कौन सी काली भेड़े मौजूद है। दफतन एक बुलंद आवाज ने हम सबको चौंका दिया। ये आवाज हमारी उसी जीप के करीब से आई थी जो मुंह के बल एक गढ़े में धसी हुई थी और जिस पर एक शैतान जादे ने बहुत सा झाड़ झंकाड़ फेंक दिया था ताकि जीप को फिजा में ना देखा जा सके। मैंने पहचान लिया, ये आवाज रेड कैट की थी। अपने टेस्ट ट्यूब भाइयों की तरह वो भी नशे में धुत महसूस होती थी। वो पुकार कर बोली, ओ लूमड़ी, इस तरह से अपने बिल में घुस कर क्यों बैठी है? हिम्मत है तो बाहर निकल कर आ जा, मेरे हाथों में हाथ डाल दे, मैं तुझे बताऊं डेथ स्क्वाड वालों से टक्कर कैसे ली जाती है। निकल आना जरा। उसने यकीनन कस्तीनिया को मुखातिब किया था। इससे पहले पाशा ने भी कल हमें बताया था कि वो कस्तीनिया के खिलाफ तैश से भरी बैठी है और जख्मी नागन की तरह बल खाती नजर आती है। आज शायद वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। महासरे की तवालत ने उसे सिख पा कर दिया था और वो हमारे करीब आकर कस्तीनिया को ललकारना शुरू हो गई थी। रिमझिम बरसती बारिश में उसकी करख्त आवाज एक बार फिर टीलों में गूंजना शुरू हुई। किसी चूहे की तरह क्यों छुपकर बैठी है चूहे की औलाद? बाहर निकलना, खुले मैदान में मुझसे दो दो हाथ कर। अंदर नहीं, मैं वादा करती हूँ हमारी तरफ से तुझ पर कोई गोली नहीं चलेगी, एक फायर भी नहीं होगा। और ये भी वादा करती हूँ कि अगर तूने मुझे मार लिया ना तो मेरे लोग तुम्हारा घेरा छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, जान बख्शी कर देंगे तुम सब लोगों की। मैं जानता था कि डेथ स्क्वाड के लोग उनमें से नहीं है जिनके वादों का कोई एतबार किया जा सके। यही बात जब मैंने कस्तीनिया से कही तो वो बोली, लेकिन शाहजेब उनको ये भी तो पता चले कि अगर वो मुझ पर फायर करेंगे तो ये हरामजादी रेड कैट भी तो जवाबी फायरिंग से बच नहीं सकेगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आप उसके सामने जाना चाहती हैं क्या? मैंने उससे सवाल किया। वो खोई खोई सी आवाज में बोली, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मैंने कहा, मेरी राय तो ये है कि आराम से यहीं पर तशरीफ रखें। ये यूरोप का अय्यार तरीन टोला है, उनकी किसी बात पर आप कभी भी एतबार नहीं करेंगी। वो आपको सिर्फ ललकार रहे हैं, वो आपको भड़काते हैं। बात एतबार की नहीं है शाहजेब, कस्तीनिया ने पहलू बदलते हुए कहा, ये खुला मैदान है। अगर ये वादे पर कायम नहीं रहेंगे तो फिर हम क्यों वादे पर कायम रहें? फिर दोनों तरफ से गोली चलेगी, ये बात ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी। इसी दौरान में टीलों के उकब से रेड कैट की ललकार फिर गूंजी, ओ चूहे की औलाद, अब बिल में दोबारा से घुस के क्यों बैठी है? मेरी बात सुनने के बाद भी तुझ में कोई असर नहीं होता? अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल, मैं खाली हाथों से तेरा इंतजार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तू भी जल्द बाहर आ जाएगी। मैंने पुकार कर कहा, कयामत की निशानियां हैं, बाप की औलाद का ताना कौन देता है? जो खुद पोल्ट्री फार्म के चूजों की तरह मशीन की पैदावार हो वो खुद किसी को क्या ताना दे सकती है? बाकी तू कहती है कि तू निहत्ती है, हमें क्या पता कि है भी या नहीं। चंद लम्हे खामोश रही, फिर वाकई रेड कैट ने दलेरी का मुजाहरा किया। वो टीले की ओट से निकल आई, उसका सुर्ख लिबास उसके जिस्म से चिपका हुआ नजर आ रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वो जिस्म का हिस्सा ही नजर आता था और यूं लगता था कि उसने जिस्म पर सुर्ख पेंट किया हो। उसने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, उसके बाएं हाथ में छोटी नाल वाली रूसी राइफल थी। उसने तैश के आलम में ये राइफल पास ही एक गहरी खाई में फेंक दी। तब उसने अपनी कमर में उड़से हुए होल्स्टर में से स्याह पिस्टल निकाला और उसे भी खाई में फेंक दिया। यकीनन ये दोनों हथियार खाई के घने झाड़ झंकाड़ में कहीं गिर कर गुम हो गए थे। मैंने गन की टेलीस्कोप से ध्यान के साथ देखा, अब उसके पास कोई हथियार नजर नहीं आता था, लेकिन यकीन के साथ फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसी दौरान में कस्तीनिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो खो से बाहर थी। उसने अपनी कमर से बंधा हुआ रिवॉल्वर चमड़े के होल्स्टर समेत उतार कर पथरीली जमीन पर डाल दिया था। तब अचानक मेरी नजर रेड कैट की एक पिंडली के उगबी हिस्से पर चली गई। वहां एक उभार था जो टेलीस्कोप में साफ नजर आता था। यकीनन ये वही दंदानेदार खंजर था जिसका जिक्र पाशा ने भी कर रखा था। मैंने कहा, ठहरें कस्तीनिया, अभी आप आगे नहीं जाएंगी। वो ठिठक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने रेड कैट को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कहा, तुम शुरू में ही झूठ साबित हो रही हो, झूठ, तुम्हारी पिंडली से खंजर बंधा नजर आता है। तो फिर क्या हुआ? वो चिल्लाकर बोली, अपनी इस गर्ल फ्रेंड से कहो ना कि वो भी ले आए कोई खंजर वंजर, बल्कि अगर चाहती है तो कोई तलवार शलवार भी ले आए, फिर देखते हैं। कस्तीनिया ने जिस आर्मी डैगर से डियर हाउंड को कारी जर्ब लगाए थे वो सामने ही एक पत्थर पर रखा हुआ था। रेड कैट की बात सुनकर कस्तीनिया मुड़ी और वो तेज धार खंजर गिलाफ में डालकर अपनी जुराब में उड़स लिया। कस्तीनिया एक बार फिर सोच लें, मेरा फिकरा अधूरा ही रह गया था क्योंकि कस्तीनिया जस्त लगाती हुई बाहर निकल चुकी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और ये वही सुर्खी थी जो एक फितरी जंगजू के चेहरे पर हालत जंग में नजर आती थी। ताजवर और सईद खोकर खो के वस्त में खड़े थे और सरासीमगी के आलम में ये तमाम सूरत हाल देख रहे थे। बारिश हल्की थी लेकिन मुसलसल बरस रही थी। मैंने MG3 के सामने पोजीशन संभाल ली और पूरी तरह से अलर्ट होकर बैठ गया। जो जगह रेड कैट और कस्तीनिया के दरमियान लड़ाई का मैदान बनने वाली थी वो खो के दहाने से कमोबेश 35 मीटर दूर थी। टीलों और कटी फटी जमीन के दरमियान ये एक निस्बतन हमवार कता था। जगह पथरीली थी और झाड़ झंकार भी मौजूद नजर आता था। कुछ ही देर बाद वो दोनों आमने सामने थी। एक यूरोप के खतरनाक तरीन गैंगस्टर्स के खतरनाक तरीन विंग की हेड थी और एक दर्जन पुलिस वालों समेत कई कत्ल उसके खाते में डाले गए थे। बड़े बड़े स्ट्रीट फाइटर्स भी उसकी खूनखारी और अय्यारी से पनाह मांगते थे। दूसरी जानिब जजीरे की आर्म्ड फोर्सेस की चीफ कस्तीनिया थी, आला तरबियत याफ्ता, फन हर्ब की माहिर और सबसे बढ़कर ये कि जोश और जज्बे से भरी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने पहुंची। अभी कस्तीनिया शायद पूरी तरह संभली भी न थी कि रेड कैट एक चिंगाड़ के साथ उस पर जा पड़ी। कस्तीनिया को उससे शायद इतनी जल्दी की तवक्को न थी। वो पूरी तरह अपना दिफा न कर सकी। उसका धक्का लगने से वो दूर जा गिरी, मगर इतना जरूर हुआ कि वो उसके नीचे नहीं आई थी। इससे पहले कि रेड कैट दोबारा जस्त लगाकर उसे छाप लेती वो तड़प कर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और दाव लगाकर गिराने की कोशिश में मसरूफ हो गई। ये एक जोरदार मुकाबला था। दोनों में से कोई भी हार मानने को बिल्कुल तैयार ना था। यकायक कस्तीनिया का दाव चल गया और उसने उसे अपने सर के ऊपर से गुजारकर संगलाख जमीन पर पटख भी दिया। रेड कैट पुश्त के बल जा गिरी और उसने यकीनन सख्त चोट खाई थी, मगर उसकी अय्यारी काबिले दीद थी। गिरते साथ ही उसने ढलवान पर नीचे की तरफ कई पलटियां खाई और कस्तीनिया की जद से दूर निकल गई। दोनों एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। शायद दोनों को ही अंदाजा हो चुका था कि वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर कोई फायदा हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में से कोई भी इतनी हल्की नहीं थी कि वो उसे गिराकर दबोच ले और कोई फर्शी दाव या फिर लॉक किसी एक को लगाया जा सके। दोनों ने एक दूजे पर ठोकरों और मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। मैं देख रहा था कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी खंजर नहीं निकाला था। अचानक कस्तीनिया के बॉयकट बाल रेड कैट की मुट्ठी में आ गए। उसने हैजानी अंदाज में चिल्लाते हुए कस्तीनिया के सर को यूं पीछे की तरफ मोड़ दिया कि उसकी गर्दन टूटने का अंदेशा पैदा होने लगा। रद्दअमल के तौर पर कस्तीनिया ने भी अपना दायां हाथ चलाया, लेकिन उसकी हरीफ के सर पर तो बाल ही न थे। अपने टेस्ट ट्यूब भाइयों की तरह उसकी खोपड़ी भी सफाचट नजर आती थी। भिन्ना कर कस्तीनिया ने उसके पहलू में कोहनी की सख्त जर्ब लगाई और फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे एक बड़े पत्थर से टकरा दिया। कस्तीनिया के बाल रेड कैट की गिरफ्त से निकल गए और तब MMA के स्टाइल में कस्तीनिया ने घूमकर एक ठोकर रेड कैट के थोबड़े पर रसीद की। मार्शल आर्ट की इस्तलाह में उसे राउंड किक कहा जाता था और ये अक्सर बड़ी कारगर टेक्निक साबित होती थी। रेड कैट की जगह कोई और होता ना तो ये तूफानी जर्ब खाकर उठ भी नहीं सकता था, लेकिन वो न सिर्फ उठ गई बल्कि उसके हाथों में चमकीला दंदानेदार खंजर भी नजर आने लगा था। अब यकीनन कस्तीनिया को भी हक हासिल था कि वो फौजी खंजर जरूर निकाल ले। वो भी तेजी से अपनी पिंडली की तरफ झुकी और तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मारामारी के दौरान में तेज धार खंजर उसकी जुराब के अंदर से निकल चुका है। ये कस्तीनिया के लिए एक जबरदस्त धचका था। रेड कैट किसी खूनी बला की तरह कस्तीनिया पर जा पड़ी। उसका चमकीला खंजर एक रोशन लकीर सी बनाता हुआ कस्तीनिया की गर्दन के पास से गुजरा। वो बमुश्किल खुद को बचा सकी। रेड कैट दीवाना वार कस्तीनिया पर खंजर के वार करने लगी। हर बार बस यही महसूस होता था कि खंजर की नोक कस्तीनिया के जिस्म को चीर डालेगी। साथ साथ वो चिंघार रही थी, छोड़ूंगी नहीं तुझे, मार डालूंगी, मैं तेरी बोटियां उड़ा दूंगी, याद रखना तू। कस्तीनिया किसी भी वक्त जान से जा सकती थी। ایک لہجے کے لیے میرے دل میں آیا کہ مداخلت کروں، اگر میں احتیاط سے فائر کرتا تو کستینیا کو نقصان پہنچائے بغیر ریڈ کیٹ کو نشانہ بنا سکتا تھا، مگر یہ لڑائی کے اصول کے بالکل خلاف تھا۔ میں یہ اصول توڑتا تو پھر دوسری طرف سے بھی تو کوئی اصول توڑا جا سکتا تھا نا۔ یقینی بات تھی کہ شیطان زادے اپنی جدید رائفلوں سمیت لڑائی والی جگہ کے آس پاس موجود ہو اور پھر وہ لڑائی شروع ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے۔ ریڈ کیٹ نشانہ بنتی تو وہ کستینیا پر گولی چلانے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہ کرتے۔ کستینیا کے جسم پر کئی چرکے لگ چکے تھے اور وہ بہت مشکل میں تھی، مگر ایک فوجی کمانڈر کی استقامت اور آخری گولی تک لڑنے کا جذبہ اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا تاجور بھی سکتے کے عالم میں یہ دلدوز مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید تھا اور ہونٹ بے ساختہ دعائیہ انداز میں ہلتے چلے جا رہے تھے۔ پھر شاید اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ عین اسی وقت جب ریڈ کیٹ کستینیا پر تقریباً غالب آ چکی تھی، اس کا خنجر والا ہاتھ کستینیا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ کستینیا بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کے لیے اپنی زندگی بچانے کا ایک آخری موقع بچا ہے۔ وہ پوری جان کے ساتھ اس کی کلائی سے چمٹ گئی۔ ریڈ کیٹ نے بھی بے پناہ زور مارا اور یہی وقت تھا جب اس کی کلائی کی بڑی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ اتنے بھیانک انداز میں چلائی تھی کہ اس چلانے کی وجہ ہڈی ٹوٹنے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دندانے دار خنجر اس کے ہاتھ سے گر کر جھاڑ جھنکاڑ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ کستینیا نے اپنے بوٹ کی زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں لگا کر اسے دور پھینک دیا۔ پھر وہ دیوانی سی ہو کر اس شیطان زادی پر پل پڑی۔ شیطان زادی کا لباس پھٹ چکا تھا اور بالائی جسم تقریباً اریاں تھا، مگر اسے اس اریانی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ وہ بدستور چنگھاڑ رہی تھی اور کستینیا کی مزاحمت کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ کبھی کبھی بجلی کی روشن لکیر آسمان پر تڑپتی تھی اور پھر بادل گرجتے نظر آتے تھے۔ بارش کی ہلکی پھوار میں کرب و جوار کا منظر دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ماسٹر فائٹرز کھڑی تھی اور دونوں خالی ہاتھ ایک دوسرے سے برسرے پیکار نظر آتی تھی۔ کستینیا کو اب ریڈ کیٹ پر اپر ہینڈ مل چکا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ کیٹ کا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا، وہ اس کمی کو ٹانگے چلا کر پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی شراب پانی کی طرح پیتی تھی۔ اس نشے نے شاید اس کے جسم میں عارضی طور پر اضافی توانائی تو پیدا کر رکھی تھی، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی۔ اپنی ٹوٹی ہڈی کے باوجود وہ چنگھاڑ رہی تھی اور پلٹ پلٹ کر کستینیا پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ کستینیا کو بھی دندانے دار خنجر کے کئی کٹ لگے تھے اور اس کا لباس خون آلود نظر آتا تھا۔ دفتن مجھے محسوس ہوا کہ ریڈ کیٹ مارا ماری کے دوران میں ایک خاص سمت میں بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ زمین میں دبا ہوا کئی ٹن کا ایک سیاہی مائل پتھر تھا۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے، لیکن فرار ہونا ان ٹیسٹ ٹیوب شیطانوں کی خصلت میں بالکل نہ تھا۔ یکا یک میرے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا، کہیں کستینیا کی اس عیار حریف نے یہاں کچھ چھپا تو نہیں رکھا۔ اگلے 4-5 سیکنڈ میں میرا یہ اندیشہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ وہ جست لگا کر سیاہ پتھر کے پہلو میں گری۔ اس کی ایک ٹانگ ابھی تک کستینیا کی گرفت میں تھی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ کستینیا، میں پکارا، لیکن اس بات کے لیے بھی دیر ہو چکی تھی۔ کیٹ نے گھاس کے اندر چھپایا ہوا پسٹل نکال لیا۔ یہ سراسر عیاری اور دھوکے بازی تھی۔ اس نے پسٹل کستینیا کی طرف سیدھا کر لیا۔ اب سیکنڈ کے 10ویں حصے کا انتظار بھی حماقت تھی۔ میں نے MG3 کا ٹریگر دبایا۔ یہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 18 راؤنڈ فائر کرتی تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے ریڈ کیٹ کی کھوپڑی اور گردن توڑ ڈالی۔ 2 سیکنڈ کے لیے جیسے کرب و جوار پر سکتا سا تاری ہو گیا، پھر دوسری طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کستینیا نے اس دوران میں بڑی حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے خود کو ڈھلوان پر لڑکا دیا اور پلٹیاں کھاتی ہوئی ایک چٹان کی اوٹ پہ پہنچ گئی۔ میں نے پوری گنجائش کے مطابق اسے کور فائر دیا۔ وہ جھک کر 10-15 قدم آگے کو بھاگی اور کھو کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئی۔ اپنی انچارج کی موت ملاحظہ کرنے کے بعد ڈیتھ اسکواڈ کا ابلیسی ٹولا کچھ دیوانہ سا ہو گیا۔ انہوں نے 2 اطراف سے کھو پر زوردار حملہ کر دیا۔ میں نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے کستینیا سے بلند آواز میں پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ لوگ بہت قریب آ چکے ہیں شازیب، ان کو روکنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 ختم ہوا۔ مزید واقعات کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے۔